हम लोग ठाकुर जी टीका से कल हम लोग विद्यापति जीवन के ऊपर ले विचार किया। ये तो दर्पण माध्यम हो गया, महाकावादी निर्वापन नाम के विकास हो जाएगा। श्रेया कैर वचन का विचरण, श्रेया कैर चंद्रिका के लिए भी विशेष व्याख्या हमने की बताया। श्रेया सत्य है, एक प्रिया है, प्रिया मैंने हमारी प्रार्थनी पत्र अवस्था में इसे हमारा कल्याण नहीं होगा। संसार में जितने हम सिर्फ सूर्य बात विक्रम महाराज जी अभी जो बतला रहे वो सब प्रिय है, उस प्रिय से हमारा कल्याण नहीं होगा। जितने प्रकार के कल्याण है उसका मूल है भक्ति, वो भी शुद्ध भक्ति, उसके संबंध में भी हमने बताया। तो श्रेया कया वचन नाम चंद्र है, उनसे किरणें निकलती हैं जो स्नान से, तो वो कुमुदिनी को विकास कर देते हैं। अतः तो भक्त के हृदय में, सागर के हृदय में भक्ति देवी प्रकटित हो
जाती है। हाँ,
वो सुखत्व आता है। अतः तो वहाँ पर भाव दशा तक आ गया ये संतो के तो दर्पणम तक अनर्थ दूर हो गया, निष्ठा आ गई, रुचि भी आ गई, ये सब आ गया। तो भी रुचि से अभी नहीं आई, और हम महादबा के दूर होते ही रुचि भी दिखा गई। और जहाँ श्रेया कर्म चंद्रिका भी करना यहाँ पर रति तक आ गई, किंतु अभी सागर सुख पेट आएगा किंतु वो परवाह नहीं करेगा। अब विद्यावधु जीवनम कलम ने व्याख्या की थी, विद्या है कौन, ये श्रद्धा के आरम्भ कर दे। श्रद्धा ये संसारी कोई चीज नहीं है, ये सर्वशक्ति की लाजिंग और संपित की सबसे छोटी जो किरण है, पार्ट टू है, किंतु वो भी सच्चिदानंद है। वो जान की कोई चीज मन की वो क्रिया नहीं, व्यतीत बांध भावना जब चमत्कार श्री सत्तो जिले बाण स्वे बाढ़। इसलिए भाव तो बात क्या, ये श्रद्धा भी कॉन्फिडेंटल ये है, इट इज नॉट एनी मूड ऑफ माइंड। तो श्रद्धा भी कृष्ण सेवा की बात करना ही ये लाजमी और संस्कार के साथ। तो ये श्रेया कर चंद्रिका ने वो प्रकट हो जाएगी, अर्थात ये भाव अवस्था वर्ष अवस्था यहाँ पर पूरी हो जाए। अब उसके ऊपर भी कहते हैं विद्या वधु जीवनम, कल हमने बताया विद्या की मूल आकर है श्रीमती राधिका महाभाव, वो कृष्ण की वधु है। इसलिए नाम उस विद्या वधु की का जीवन स्वरूप प्राण स्वरूप है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि वो जो गुप्त भक्ति देवी जल्दी प्रकट हो, और विद्या का थोड़ा सा भी कोई कालिमा रहेगी, थोड़ी सी भी कोई चिन्ह रहेगा, अविद्या दूर हो गई किंतु फिर भी उसकी थोड़ी सी भी कुछ जमी रह गई, जैसे भावावस्था में अनर्थ दूर हो जाते हैं सब प्राय की सब
वचनी भोजनी पाए की पूर्ण
सब पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण नहीं होती, वही छोटी सी रह जाती है। जब प्रेम होगा तो पूर्ण होगा, भावावस्था में भी लोग वहां से नीचे उतरते हैं, जैसे हम देखते हैं भक्ति के चरित्र में और भी लोगों के चित्र के महाराज की हम लोग उदाहरण में हम देखते हैं कि भावावस्था पर पाने वाले भी वो थोड़ा सा नीचे कभी बेहतर आते हैं, भाव कम रेय किंतु हो जा सकता है।
वही
तो उस समय में भी आदमी जी सकता है,
वो टेम्परेरी गिरावट होती
है, जैसे भी हो सकता है, किंतु प्रेमावस्था से नहीं, उस समय में प्रेम की कल्पना भी छाया करने लगे। तो अब ये जो विद्या में जीवन कर रहे हैं, इसके लिए समझो जी भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं बीच में शुद्ध भक्ति का लाजिम और संदिग्ध का शुद्ध स्वरूप हृदय में जब पूजित हो जाएगा, उस समय में भगवत सेवा के अतिरिक्त अन्य कामनाओं वासनाओं को दूर करने वाली भक्ति के लिए अविद्या करके संपूर्ण रूपे से पूर्णांग रूपे से दूर कर दिए विद्या वृत्ति द्वारा जीवे स्थूल अलिंगमय शरीर जाके दूर कर दिए, स्थूल शरीर दूर कर दिए, आज लिंग शरीर नष्ट हो गया, অধিকার ভেদে মধুর রসের আস্বাদন যোগ্য শুদ্ধ চিন্ময় গোপী দেহ থেকে প্রকট করে দিয়েছে, গোপী দেহ তাহলে এই বিচার বোঝাচ্ছে যে এই ভাব অবস্থা থেকে উপরের কথা তিনি বলছেন, প্রকট করা দেতে
গোপী কাজ প্রকট হোনে কি বাত পেলে কাহিয়ে
গোপী নেই অধিকার ভেদে এ সমঝো শান্ত দাস সত্য বাতচন্দ্র মে আর মধুর তত মে যা তক জীব কা অধিকার হ্যাঁ उसमें यहाँ तक की गोपी अधिकार गोपी देश आपको प्रकट करेगा,
नहीं यहाँ प्रकट होने की बात है और वहाँ पर शुद्ध चिंतन पहले से है वो बताया गया है,
कहाँ बदला गया
पहले, इसके पहले में कहा गया है कि शुद्ध चित स्वरूप है, शुद्ध चित देह है,
उसको पोटेंशियल के रूप में ये समझो, जैसे बीज में पेड़ है, फल है, पत्ता है, डालियां है, चित प्रकट नहीं है,
गठन
आप वो लाजवी शक्ति की वृद्धि को और वृद्धि को पा सके सौंप ये नहीं होने से नहीं होता, इसे जैसा अधिकार है जब वो वृद्धि हमारे हृदय में आएगी तब ये कैसे आएगी, उनके अनुगत में रागात्मी भक्तों के अनुगत में जब भजन करेंगे वैसा तब प्रकट होगा, अभी तब प्रकट नहीं था, है पोटेंशियल, पोटेंशियल समझता है उसमें जी तटस्थ अवस्था जैसे प्रकटित नहीं हुआ, अब उसकी शक्ति पा लीजिए, सीप में मोती है, मोती को पैदा करने वाली चीज सीप में है, वो पानी में नहीं है, किंतु उसके पानी के मिलने से उसमें से वो निकल करके वो बन जाता है, जैसे मोती पानी से नहीं होगा, पानी चाहता करता है, समय कीर्तन इत्यादि ये सब पानी है और वातावरण है, उसी के माध्यम से लाभ ले सकती कि वो वृत्ति उसके हृदय में प्रकट होकर के इसका जो शुद्ध स्वरूप है अभी तक जो अभी प्रकटित नहीं था उसको, अब ये मैंने समझो कि ये प्रेम हो गया, ये प्रेम की अवस्था है, भले था श्रेय कार्य चंद्रिका भी तरण ये कारक ही करता, अब ये प्रेम की अवस्था में गोपी देह को उसने प्राप्त कर लिया या सत्यता वास्तव्य का शांत का ये सब प्राप्त कर लिया, अतः कृष्ण कीर्तन विद्यार्थी बंधु के जीवन स्वरूप है, प्राण स्वरूप है, शरीर जी शरीर में आ जाएगा, शरीर आ गया किंतु प्राण कितने दिन के बाद में आता है, प्राण तो उसके साथी मनाने पर भी वो प्राण जब ऐसे श्वास जब बच्चा पेट में लेता कब लेता है,
सातवें
महीने में, किंतु प्राण उसमें था कि नहीं, काम नहीं करता था, यही था जीवात्मा थी किंतु जीवात्मा का कोई हलचल ये सब कुछ भी नहीं था, वो सात महीने के बाद में
आया शुरू होता
है, किंतु था उसमें समय पर वो होता है, ऐसे ये जब लाभ शक्ति की वृद्धि यदि उत्पन्न हो उसके हृदय में तो उसका सिद्ध स्वरूप जो है, अब ये काम कैसे, अब इसको इस रूप में समझो, भावावस्था तक रति तत्व इस जगत में साधन किया है, इसके बाद में साधन इस जगत में नहीं है, अब उसके अंदर में प्रेम को प्रकट करने के लिए ब्रज में इस अधिकार का वो व्यक्ति है, साधक है, और वहाँ पर शुद्ध शरीर से वहाँ पर या तो दास्य शब्द बात्सल्य या मधु यहाँ तक की अधिकार देते हुए वहाँ पर उनके गर्भ से प्रकट होता है जिसका वहाँ ब्रज में गधा है। ब्रज में गधे हैं कि नहीं? ब्रज में गाय भी है,
गाय
कृष्ण के पुत्र भी है, मयूर भी है,
व्याघ्र प्रसन्न भी है।
तो ये सबका स्वरूप में ये है, सबको गोपी हो जाएगा ऐसा मत समझना। हो कम लोग जिसका जैसा स्वरूप है लाजनी शक्ति उसको ऐसे ही। अभी हम लोग यहाँ से अनुमान करके एक सुंदर है अनुभूति अभी बहुत दूर, ऐसा सब साधन उगाना देने कितने जन्मों के बाद में इसी को हम समझे। अतः विद्यावधु सब विद्यारूपी वधु के जीवन स्वरूप के नाम है। यहाँ तक कि प्रेम हो जाने पर भी गोपी के शरीर में या सखा के रूप में प्रकट होने पर भी वहाँ पर कीर्तन चलेगा कृष्ण का, जैसे तव कथामृतम रक्त जीवनम कविरेतम कलात्मकम शरणमंगलम जीवतासतम प्रसिद्ध है सभी के का। इसलिए कृष्ण कृष्ण प्रेम हो जाकर के ब्रज में जन्म हो गया गोपी के यहाँ या सखा के रूप में हुआ, सखा रूप में कीर्तन करेंगे कृष्ण का। ये कीर्तन अंत तक नहीं छूटेगा, वहाँ पर नित्य रूप में ये विजय के वहाँ पर मंत्र जितने हैं इस जगत में भाव अवस्था तक रहेंगे। भाव अवस्था का मंत्र भाव अवस्था परे जखन ही प्रेम भेज जाए आ मंत्र को प्रयोजन ऐसा सिद्ध स्वरूप पूजित करिए संबंध के पुष्ट कर दीते बारे किंतु बोलो वृंदावन से कि बैकुंठ से वो जानिए जाए ना मंत्र वो जानिए थे जाए किंतु जातत्व को प्रयोजन এইখানে ভূমিকা একটা বলে সব প্লেটফর্ম সব ঠিক আছে। শ্রীকৃষ্ণকে লীলা বিলাস বর্ণন কে প্রসঙ্গ মে স্বরূপ শক্তি কা কৃষ্ণ কা বসুত্ব ইয়ে দর্শক হ্যায় অর্থাৎ ভক্তি মনতা আর বিদা বলিয়ে তো কোন বলেগা
নবেন গুরু
বলবো বলবো
আমি বলবো
अरे क्या हुआ
सुंदर सुने जिन पर बहुत सारे सुंदर शासन करने के पास वो करेंगे
महाराज इज एक्सप्लेनिंग द कॉमेंट्री गिवन बाय श्रीमती विनोद ठाकुर। ही इज नाउ एक्सप्लेनिंग विद्यावधु जीवनम वन बाय वन different stages has been crossed right from Shraddha. Maharaj explained yesterday and in a very brief description today he is saying that at a stage of Sreha Keram Chandrika Vidhanam Sadhak attains to the stage of Agrati. There are two things, Sreha and Sreha. These are Hindi words. We should be aware of these words. These are Sanskrit words. In conditioned state, our desired objects are called Sreha. The thing for which we are desiring in conditioned state is called Sreha. But when for transcendental things, when we desire, the topmost thing, that is called Sreha. Maharaj explained here that to attain any goodness and beneficial thing, the basis is bhakti. Without bhakti, we cannot attain our real benefit. In this world, Naam, that is name, it is moon, and its beam, its light is there, which makes a bud of flower lily to develop as a flower.
If you are not understanding, you should question.
Ray of moon, kiran, jyotna. This ray makes that bud of lily to bloom and become the flower. Maharaj is explaining, it is like that Naam is moon. And its light, when it comes on living entity, it stages like birth, and after receiving that ray,
what is this ray? Lakshmi and Sandini.
Essence of
this.
This ray is essence of Lakshmi and Sandini. It is emitting from moon, that is from Naam, from name.
And this stage is called
Bhav
or Rati.
This stage is called Bhav and Rati. This stage started from Shraddha. Maharaj today again reminded us that Shraddha, when it came in the heart of the sadhak, this Shraddha is also a very, very thin ray of essence of Alasani and Samve. We should notice that Shraddha is not the production of material entity. That is, it is not produced by mind thinking or brain thinking. It is transcendental and coming from transcendental era. That is, it is essence of Alasani and Samve, which is a transcendental entity. Now, Maharaj is explaining that vidya vadhu jivanam. Vidya vadhu jivanam. The origin of all vidya is Radharani. If we convert all the vidya, it comes to Radharani. She is vadhu. Vadhu means Vadhu means that she is wife of Krishna. So, origin of all the vidya refers here to Radharani, and her husband is Krishna. If there remains anything of avidya, that is, a slightest blackness of anatta in our heart. Maharaj explained that even up to the state of bhav, something of anatta state. It is called praya. Prahaya ki kasai, Maharaj was using the word. That is anatta in a very, very feeble form. But
like
it still may exist.
Like shadow.
Like shadow. Maharaj is giving an example like shadow. Kasai. If there is a stain on a cloth, then you wash it, and after washing only a very feeble
shade. Shine something. Like some shine
means that type of. That is why even at the stage of bhava, Maharaj is explaining, there are chances of falling down.
Like
we have seen the example in Bhagavatam, like Chitraketu, like Bharat Maharaj. But now, when there is an explanation of Vidya Vadhu Jivanam, it is above the stage of bhav, that is when prem is attained. Above bhav, the stage comes of prem. in this state,
but we cannot attain prem in this world.
In this state, the sixth day, eternal body is attained, and this eternal body is not in this world.
Both is full and limited.
And our gross and subtle body that goes away, that settles down and Sadhak attains his real eternal spiritual body.
But how he will attain the Siddha Sarup? He will go to Braja, he will go to Vaikunth, and there in Golok Vrindavan, he will come in the form of any gopi, or he will come in the form of any peacock, and or all those are there, or like monkey, anyhow, he will have to take birth in there.
Maharaj also explained here that eternal constitutional position of every living entity is ascertained. It is not that it will differ. It is fixed for each and every living entity. And he was justly saying, if suppose eternal constitutional position of living entity is that he will become donkey of Golok Vrindavan, then he will attain his perfect body. That body will be of a donkey. Because in Golok Vrindavan there are donkeys also and other living entities also. So we should not get confused that every sadhak will attain only gopi's body. No, it is according to his constitution.
That is
whatever his constitutional position is there, the same will be manifested. He will attain the same body after attaining the perfection. So, when the spiritual body is attained, at that time also kirtan will continue. Then, this vadhu, kirtan will become his life and soul. Just as husband is life and soul of the wife, similarly, kirtan will become life and soul of that person who attains the perfect body. Here Maharaj is explaining one thing. Up to bhav, we were doing sadhana. We were cultivating at the different way of bhakti. After bhav, sadhana is stopped. And after bhav, sadhana is not yet, so he is explaining that mantra. This mantra remains up to bhav only. And
like Gopal mantra.
Gopal mantra and other mantra
and all other mantras.
They are mantras establishes our relationship. After establishing the relationship, bringing us up to the point of bhav, they cease, they stop. But Harinam continues. This is a thing which we were cultivating during the time of Pradhan also, and after attaining bhav it will continue, and when we transcend the state of bhav and attain prem, again it will continue. So Maharaj is saying, after attaining the perfect body, also that kirtan keeps on going. How? Tam katham ratam all gopis are.
Then Srimati Radhika and all gopis, in all the states, they even in separation and meeting, they may do kirtan.
So, therefore, Maharaj was saying, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan. Therefore, this body is used because this is the thing which keeps on in all the stages, right from sadhana to sadhana, and in meeting also, and in separation, and to Radharani also, Maharaj is explaining.
আরে রসানন্দ তুমি ওখানে কেন বসিস, এখানে সামনে আসতে পারছিস না, বুঝলে? আচ্ছা এবার তুমি নোট করো তো, এবার তুমি আমার যা বলবো তুমি বলবে। এখন প্রেম হল, সারিক্ষ লিঙ্গ শরীর সম্পূর্ণরূপে তেরে দূর হয়ে বৈকুণ্ঠে অথবা অধিকার ভেজে ব্রজে এম অধিকার ভেজে গোপী শরীর পর্যন্ত তাহার প্রাপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু তথাপি কুচকটায় থাকবে ও কটায় কিরকম দূর হবে? গোপীগণে যারা কামরাতে ঘরেতে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে তাহাদের নিত্য সিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গে যখন তাহাদের সঙ্গ হবে অথবা কৃষ্ণের স্পেশাল যদি কোনো কৃপা হবে তখন ও কটায় দূর হবে অন্য স্থানে ওখানে কটায় থাকবে। তখন তারা রাত ইত্যাদিতে এই সাধন সিদ্ধা যে গোপীগণ আছে তখন যাদের নিত্য সিদ্ধার সঙ্গে সঙ্গ হলো অথবা বিরহ তাপ হলো যে কোনো একটা জরুরি ওখানে আছে তাহলে কটায় দূর হবে অন্যথা দূর হবে। তখন তারা কৃষ্ণেতে খেলাধুলাতে তাহার সঙ্গে যাবে, তাহার বাৎসল্যরসে যশোদার মায়ের বাড়িতে যাবে, আঙ্গনেতে যাবে, কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে তাকে সঙ্গ দিতে পারবে, অথবা মধুর রসেতে তারা শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণ দুজনের তারা সেবা দিয়ে অধিকার পাবে। এর পূর্ব কটায় থাকা তারা দূরেই থাকবে। এখন তিনি বলছেন তোমরা বুঝে যে এই সংস্কৃতির বৃত্তি উদিত হল হৃদয়তে, প্রেম হয়ে গেল, ফুল লিঙ্গ সব শরীর সম্পূর্ণ রূপে বিদূষিত হয়ে গেল, আর জীব শুদ্ধ স্বরূপ নির্মল হয়ে গেল। কিন্তু জীব তো অণু, এটা ভুললে চলবে না। অণু অতএব যদি কেউ প্রশ্ন করে যে জীবের স্বরূপ অণু অথবা ক্ষুদ্র, এই জন্য তাহার স্বরূপগত যে আনন্দ প্রকৃতি গেলেও জীব অণু, এই জন্য অণু আনন্দ তা পাপ, তার কর্মটা যে আছে কেউ তা অণু হোক স্বরূপগত স্বরূপ ক্ষুদ্র, এই জন্য তার ধর্মটা অণু হোক। অর্থাৎ ওখানে যে সেবা সুখান পালন করু ওটা অণু ক্ষুদ্র রূপিত করুন, তখন আশঙ্কা দূর করবার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন আনন্দাম বুদ্ধি বর্ধন। জীবের স্বরূপ ক্ষুদ্র হলেও তার যে আনন্দ আনন্দাম বুদ্ধি বর্ধন, আনন্দের অম্বুধি, অম্বুধি মানে অ্যান্ডারে কোন তার সীমা নেয়, নিজে তার খা নেয় যে কত জল আবাদ জল সীমা রবি, এইটা যা বলে সমুদ্র। এই রকম আছে তার যে আনন্দ তাহলে কিরকম আছে, অথা অনন্ত অসীম সমুদ্রের মতন ঠিক হবে, নিরন্তর বাড়তে থাকবে, তার মধ্যে লাভ থাকবে, তার মধ্যে ঢেউ আসবে, ওখানে লহরে আয়েঙ্গি, আর ও নিত্য বাকি হোগা, ও ক্ষুদ্র নেই হোগা, তাকে কেউ
রসনে আ যায়।
इसलिए कि उसका विषय आलंबन जो है वो कृष्ण हो गए, विषय आलंबन और कृष्ण तो अनंत है, उनकी सेवा भी नित्य न और नवायमान है, उसी के लिए कर रहे हैं। अब अपनी ठाकुर का उस अवस्था में जबकि नित्य सिद्ध उसको मिल जाता है, नित्य सिद्ध गोपियों का शरीर उनका संग मिल जाता है, उनका वो जो थोड़ा सा कटाया था वो भी दूर हो गया, तब कृष्ण नाम संकीर्तन उस समय में लाजमी सार वृत्ति के द्वारा जीव के स्वाभाविक आनंद को अनंत अपरिसीम अवस्था तक लेकर के बढ़ाता है, उसमें अप्रंत धाराएं, उसमें ध्येय और करंट इत्यादि सब उसमें आ जाते हैं। अर्थात शुद्ध स्वरूप जो प्राप्त जीव है वो अपरिमित आनंद लाभ करते हैं, भोग करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने या इसकी टीका में उन्होंने कहा कि आनंद का उपभोग करते हैं, उसमें ने अधिकार जैसे जीव कि मैं एक रंग होकर के दास्य स्वच्छ वात्सल्य या मधु जितना उसका अधिकार है, जिसका जैसा स्वरूप उदित हुआ है
उसके अनुसार में इनमें से किसी एक रस में प्रतिष्ठित हो जाएगा, इनमें से किसी एक रस को, सब रसों में नहीं। किंतु एक बात और समझो, दाक्ष रस में प्रतिष्ठित होने से दाक्ष रस तक नहीं, किंतु यदि किसी को वात्सल्य रस हो जाएगा तो उसमें क्या क्या आएगा?
शांत
दास्य स्वच्छ, ये सब वो सब उसके अंदर में आ जाएंगे। और किसी में मधुर होगा तो वो ये सब का उसमें आ जाएगा, क्योंकि सबको पुरुष पूज करके रखता है। यह समझते
आकाश आदि गुण जनों
आकाश आदि गुण गुणों पर
परिभूते
पृथ्वी से जैसे पृथ्वी में सब गुण है, ऐसे ही मधुर रस में सभी गुण है और सभी भाव और सभी गतियां हैं। गोपियां कभी दास्य की भांति सेवा कर सकती, कभी सत्य के भाव में उसके कांटास में खेलेंगी, कृष्ण को पीड़ा कराएंगी और बात कर लेते उनको ताड़ मर्दन भी करेंगी, लज्जा की एकदम परखराए उनको शासन भी करेंगे और मैया जैसा उनको पालन पोषण भी करेंगे। और इसके बाद भी जो इन लोगों में नहीं है, अपने संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में अपने को निर्दिष्ट करेंगे, जो और रूप नहीं करेंगे। इसलिए मधुर रस में सभी चीजें हैं, ऐसा समझना। इसलिए पूर्णामृता आस्वादन, पूर्णामृत का आस्वादन करता है भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी इत्यादि नित्य नमी गोलोक वृंदावन के ये कृष्ण रूप माधुरी, लीला माधुरी आज अन्य के गुण गुणी नित्य नमी कभी भी पुरानी नहीं होती। यहाँ पर हम लोग जब जमते हैं तो सामने से कोई सुंदरी महिला जा रही हो तो इच्छा मुझे जब देखे तो फिर करके देख लेते हैं, किंतु एक बार देखने के बाद देखते देखते तो। या कोई लड़का हो उसको लड़की देखना चाहती है, एक बार देख करके फिर देखने की इच्छा नहीं। किंतु कृष्ण की लीला माधुरी और उस माधुरी कैसी, और आगे देखा जी कह रही है ललिता और विशाखा को, अरे इसको जो देखा है मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा, ये कौन है? तो अरे अभी तो वहीं से आ रही है जिनकी गोदी से, और तुम पूछ रही है कौन है? तो कृष्ण के लीला माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी ये सभी नित्य नवी कभी पुरानी नहीं होती है। जैसे ये हम लोग भक्ति की बातें सुनते हैं, पूज्य बात त्रिविक्रम महाराज जी भी रोज वही एक ही बात कहते हैं, एक ही श्लोक गोविंद लघु जो गुप्ता है, किंतु नवीन नवीन अर्थ में इसी व्यक्ता करके बुझाते हैं। हम भी भक्ति की बात करते हैं किंतु आप सुनने के लिए क्यों आते हैं? जब तो क्या है जब भी इसी जगत में ही नवीन नवीन है एक ही बात, तो उस जगत में कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गोपियां ये कौन है? ये ठीक है, अभी श्याम के रूप में देखा, उसने कुछ और देखा, उसकी मुस्कान में नई नई चीजें, उसकी बंसी ध्वनि में नई नई चीजें हैं, इसे पुरानी कभी नहीं होती है। और तो जगह पुराना हो जाएगा इस जगत में। तो लिखन प्रेमी जी उन माधुरियों के निरंतर पान करते रहने पर भी सदा अतृप्त बना रहता है। अतृप्त माने तृप्ति है ना, जैसे हरि कथा श्रवण कर ले तृप्ति है ना, महापुरुष मुखे रूपी मुखे जी के हरि कथा सुने तृप्ति होगी। परीक्षित महाराज बोलते आपने ये कथा बोलते हमारे तृप्ति होते आर सुनते आर सुनते जब इतनी सलीसा ना छाते ताजा की हो तो एक ऐसे विषय प्रतिदिन प्रतिदिन दिन पर दिन आप हरि कथा को दिन शुरू न रहे। एक रकम हमारे कहा कि लीला माधुरी रसास्वादन एटा नित्य भक्तरा अतृप्त था। श्रीमती जानिका की बोले तिनी बोलें प्रेम
न प्रेम बंधु
আমাকে প্রেম নাই আমার জীবনটা বেকার,
প্রেম ধন বিনা
দাস
করি বেতন
দাস করি বেতন এটা কে বলছে? চৈতন্য মহাপ্রভু কি বলছেন? আমার জীবনটা বৃথা, লোক বলে যে প্রেম আছে, প্রেম আমার কোথায়, আমি মরে গেলাম না, কৃষ্ণের বিবাহে আমি কৃষ্ণের দর্শন করলাম না, মরে গেলাম না, তার প্রেম কাছে। আর একটি মাছের মধ্যে একটা যে প্রেম আছে জলের প্রতি, আমার মধ্যে হলো না, হায় হতাশ করছেন। আর মহাপ্রভু সঙ্গে আর জগতে কেউ প্রেমিক আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রজে কেউ কেউ প্রেমেরই এইটা এইরকম হবে জিনিস যার হয়ে যার অতৃপ্ত থাকে, ফলত থাকে কি হলে এই অতৃপ্ত থাকবে। এই জন্য বলছেন যে অর্থাৎ নিত্য নবীন রূপ নে মাধুর্য কা নিরন্তর পান করতে হ্যাঁ ভোগ করতে হ্যাঁ। এই আশঙ্কা হতে পারে বহু লোকের, এই আশঙ্কা আপনার বিশ্ব যারা আচ্ছি তরফে সমঝেন আশঙ্কা ক্যা। আরে ভাই এ সংসার মে জো সুখ ভোগনে কি লালসা হতি হে ভোগ হে মাইক ব্যাপার আর বন্ধন কা কারণ হে ভোগ। और वहां पर जीव आनंद भोग करता है तो ये बद्ध जीव हो गया, ये भोग करने की प्रवृत्ति कहां से आ गई, ये आशंका है। फिर वो अवस्था में जीव वैकुंठ ब्रजलोक में जाकर के गोपी सभी की बात करते हैं और वहां पर आनंद का भोग करता है। जब जीव नित्य नवीन प्रेमानंद का भोग करते हैं तब तो अपने सुख की बात ना है। चैतन्य चैतामृत में इस विषय को कृष्णदास कविराज को सामने बड़े सुंदर रूप से वो क्या चाहती है कि कृष्ण का आनंद हो, कृष्ण को आनंद दे करके वो बड़ी प्रसन्न होती है। और गोपियां कृष्ण क्या चाहते हैं, गोपियों का आनंद हो, इसलिए वो उनका प्रसन्न दे करके कृष्ण को आनंद होता है। अब ये दोनों में लड़ाई लगी, पूरा आनंदी लगे वो बोलते कि तार आनंद हो देखे कृष्ण आनंदित होते हैं, কৃষ্ণ প্রজেতে আসেন তার পিলা বিলাস কিসে জন্য করছে, গোপী দেখছে আর গোপীরা কিসে জন্য করছে, কৃষ্ণের জন্য করছে। তাহলে তো ওখানে ভোগ বাসনা কৃষ্ণেরও আছে আর তাহলে কৃষ্ণ বদ্ধ আর গোপীরাও বদ্ধ, ভোগ বাসনা থাকাতে যে না খবরদার এটা মনে করবে না, ওই ওই বদলা ইসলিয়ে যদি কবি কিছু मध्यम अधिकारी को जिनको भाव जागृति हो गई और वो आनंद का साधन करता है अथवा मुक्त पुरुष प्रेम को पा करके वहां पर जिस ब्रज में जो आनंद का उपभोग करते हैं यह गलत नहीं है। इसलिए इसको ये बतला रहे हैं अब खूब अच्छी तरह से समझ जो कैन बोल ऐसा बोलना कि हम लोगों से पूछेंगे जहां ये ठीक समझ रहे हैं। महाराज जी डिसाइड करेंगे बोल
सकते
हैं, ये बोल रहा है ठीक ही नहीं, ये डिसाइड कर अंग्रेजी ठीक हो रही है
प्रॉपर। नाउ प्रेम गेम एंड टू स्टोरीज एंड लिंग स्टोरीज बोथ वर्ड इज एंड प्रेस नाउ वैकुंठ नाटक देट अप टू ब्रश we can attend there. Yes, there is some kothar. How this kothar will go away forever? There is two ways to remove this kothar. Either
what is kothar?
They do not understand what is kothar. Kothar is there some
dose.
Meaning in Hindi.
So how this defect will go away? There is two ways to remove this defect. Either association with Nitya Siddha, then internal associate, either separation. So Maharaj explained and mentioned one slope from Rasmajya Sari. When they attain in the external form, then they will play Krishna if they are in Sakara, if they are in parental mood, they will give their best to Krishna, if they are in Madhura, they will serve the divine couple according to their over constitution also. When the victory of Parashakti manifests in our heart, then Jeev Swarup will be pure. But Jeev is minute form. So, now inquiry can come or doubt can come in someone's heart. Then his Swarup is minute, then his religion must be minute. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu wants to remove his doubt. So, Mahaprabhu is deliberating here, Ananda Mudi Vardhanam. Mudi means ocean. It is endless, limitless and infathomable. So, his deed is anu, but his religion is not anu. Just like the Bhaktivinoda example, that when one particular fire is coming from big fire, if he gets a heap of particles, then he can destroy the whole world. Similarly, he is minute, but his religion is not minute. And in ocean there is some oil. So when he will be perfect, then he will also, there is some waste in his religion. Why so? Because now we have this Alamman. Who is this Alamman? Krishna is this Alamman. Krishna is Ananta, that means endless. So, the Jiva's religion also lives here endless and in Patamavuru. And at that time, he will enjoy pleasure. According to your own sadhu, there will be 50 in one law, like Samsa, Dasa, Sakha, Vatsala and Madhur. In Samsa there is only one quality, in Dasa there is two qualities, in Sakha there is three qualities, in Vatsala there is four qualities, in Madhur there is five qualities. Just like the Bhagavad Gita is explaining in the Chaitanya in five elements, there are the five qualities in art, four similarly left. Gopis, they serve Krishna in all kinds of rasas, in all moods. Just like they can serve Krishna like a servant, they can play with Krishna like a sakha, they can ridicule with Krishna, they can review Krishna, just like Raja will review Krishna in parental mood. And after all, they can serve Krishna with a whole body, which is impossible other than Madhura. Purnamita sadhana, now Purnamita sadhanam. Bhagavan has four madhuri. It is always new. It never be old, never be ancient. In this world, if any Hindu lady is passing through, then he wants to see her or any very beautiful boy. But if he see one, then our mind don't want to see two eyes. But sweetness of Krishna is always new. Sri Maharaj gave an example. Sri Radhika came from Krishna, and after that singing, she is asking to Lohita and Visakha, who is that person? I never seen him. Now Lohita and Visakha is telling, you came just now from him. You could not understand who is he? Then I don't know. I never seen him. So Krishna's Madhuri, sweetness is always new. Just like Sri Maharaj is giving an example. According to Sri Krishna Maharaj, always explaining one floor, going to Bhujagasta and Dharavastan Kurudhva. And I am explaining also that Sri Maharaj explained also about bhakti. Yes, all of you are coming to here every day. What is the cause? Because bhakti is always new, never they can ancient. Similarly, Krishna's smiling face, Krishna's fruit, always new and new, never be ancient, never be old. And here in Harikatha, our point of hearing Harikatha never be, our thoughts of hearing Harikatha never be coined. Sri Parikshit Maharaj is asking Sukadeva Goswami, why I am hearing Harikatha, but my mind is unsatisfied. Parikshit Maharaj after 7 days passing away, if you will be present after 7 days or so, always you will hear new first time. And first
Krishna. Just like Prabhupada was explaining, Vibhuti Kalyana Sadhari Krishna, Vibhuti Kalyana